ணமோர்ஹந்தாணம் ணமோ சித்தாணம் ணமோ ஆயிர்யாணம் ணமோ உபத்யாயாணம் ணமோ சஃசாஹூணம் ஈசோ பஞ்சிணமோ யாரோ சவ் பாவப்பணாசனோ மங்களானஞ்ச சவ்வேசு படமங்கவை மங்களம் சத்தாரி மங்களம் அர்ஹந்து மங்களம் சித்த மங்களம் சாஹு மங்களம் கேவலி பண்ணத்தோ தம்மோ மங்களம் சத்தாரி லோகுத்தமா அர்ஹந்து லோகுத்தமா சித்த லோகுத்தமா சாஹுலு குத்தமா கேவலி பண்ணத்தோ தம்மோ குத்தமா சத்தாரி சரணம் பவ்வஜாமி அர்ஹந்த சரணம் பவ்வஜாமி சித்த சரணம் பவ்வஜாமி சாஹு சரணம் பவ்வஜாமி கேவலி பண்ணத்தோ தம்மோ சரணம் பவ்வஜாம் க்ஷண பங்குர் ஜீவன் கீ கலிகா கல் பிராத கால் கிளி ந கிளி மலையாச்சல் கீ சுச்சி சீதல் வாயு சுகந்து சமேத் மிலி ந மிலி கலிகால் குடாரலியே பிருத்தா தன் நம்ர சே சோட் ஜிலி ந ஜிலி பஜலே அரிஹந்த் அரி ரசனா பிர் அந்த் சமய மே ஹிலி ந ஹிலி
अष्ट पावड़ से अपन तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय पढ़ रहे हैं। आठ अतिशय अपन पढ़ चुके हैं। देवकृत 14 अतिशयों में से आठ अतिशय अपन पढ़ चुके हैं। उन अतिशयों से पूर्व अपन ने जन्म के शरीर संबंधी 10 अतिशय और केवलक ज्ञान की उत्पत्ति के उपरांत होने वाले घाती कर्मों के क्षय से जनित 10 अतिशयों को पढ़ा। अब देवकृत 14 अतिशयों में सर्वभाषा सर्व जनता मैत्री सर्व ऋतुओं के फल पुष्प और कोंपल प्रवाल जिनको कहते हैं नवीन पत्ते, फिर भूमि का रत्नमय हो जाना दर्पण के समान स्वच्छ हो जाना और वायु का पीछे से बहना सुगंधित मंद शीतल वायु का पीछे से बहना और सर्व लोकों को परम आनंद होना, ऐसा आनंद उनको कहीं लौकिक जीवन में न मिला हो वैसा आनंद वहां पर भगवान के सानिध्य में होना, फिर एक योजन सामने की ओर, जिनेंद्र भगवान जिस ओर विहार करेंगे उनके सन्मुख, उनकी सन्मुख दिशा में एक योजन तक के भूमि का सम्मार्जन हो जाना। जो वायु कुमार देव हैं वहां से धूल, कांटे, तिनके, कीड़े, कंकर, पत्थर, इन सब को साफ कर देते हैं। वो वहां पर जो जीव जंतु है उनकी विराधना नहीं होती है, उनको व्यवस्थित ढंग से कर देते हैं अलग। और फिर आठवां जो अतिशय था वो था कि स्तनित कुमार अर्थात मेघ कुमार, जो भवनवासी देवों का एक भेद है, वे सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। और इसके उपरांत जो भगवान का तीर्थ विहार होता है वह विहार कमल रचना पूर्वक होता है, उसका वर्णन है। पादाधो पादाधो अंबुजमेकम, पैर के नीचे एक अंबुज होगा। जलवाची किसी भी शब्द में ज जोड़ दो तो कमलवाची होता है, अंबुज, जलज, अंबुज, नीरज, ये सब जलवाची शब्द, ये जल में ज जोड़ करके कमलवाची बन जाते हैं। और पंख के साथ भी अगर ज जोड़ दें तो भी कमलवाची होता, पंकज। तो कह रहे हैं कि भगवान के चरण के नीचे एक कमल होगा, अग्रतः सप्त कमलानि, आगे पंक्तिबद्ध सात कमल होंगे। पृष्ठतश्च सप्त पद्मानि, और पीछे भी सात कमल होंगे। योजनैक प्रमाणानि, एक योजन उनका प्रमाण रहेगा, माप रहेगा। प्रत्येकं सहस्र पत्राणि, और प्रत्येक कमल हजार पंखड़ी वाले होंगे, उन कमलों में हजार पंखुड़ियां होंगी। और कैसे होंगे? पद्म राग मणि केसराणि, जो कमल बने होंगे ना उनके बीच का जो भाग होगा जिसको कर्णिका कहते हैं, जहां केसर अर्थात अंग्रेजी भाषा में उसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, पराग भी बोलते हैं हिंदी में, वो जो भाग है वो पद्मराग का होगा। पद्मराग का अर्थ है माणिक्य। और वे अर्धयोजकानि भवन्ति, कर्णिका वाला जो भाग है ना आधे योजन प्रमाण होता है, कमल पूरा एक योजन का होता है। सर्व, अब ये एक अतिशय होगा, भगवान का गमन ऐसे होता है कमलों पर। और ये सामने की एक पंक्ति, पीछे की एक पंक्ति, ऐसी सर्व दिशाओं में 32 पंक्तियां होती, दिशाएं, विदिशाएं, अंतर दिशाएं, मध्य दिशाएं, सब मिलाकर 32 पंक्तियां होती है कमलों की। और 32 पंक्तियों में सात सात कमल होंगे, तो सात को 32 से गुणा करें 224 कमल हो जाएंगे। और जिस कमल पर भगवान का पैर रखा है वो और गिन लेना, तो 225 कमल होंगे। फिर भगवान जब विहार करते हैं तो आगे की ओर विहार करेंगे, तो आगे की ओर विहार करने पर क्या होगा कि वो जो पंक्ति है उसमें से सात में से छह कमल रह जाएंगे, और पीछे की जो पंक्ति है उसमें एक कमल की वृद्धि हो जाएगी, सात के आठ हो जाएंगे। लेकिन वो देवातिशय ऐसा रहेगा कि पीछे से एक कमल लुप्त हो जाएगा और सामने एक कमल प्रकट हो जाएगा, और सारी पंक्तियों में इसी क्रम से, व्यवस्थित क्रम से वो कमल लुप्त और प्रकट होते चले जाएंगे। वो जैसे अभी वो लाइट्स लगाए जाते हैं ना रात में, और उसमें से कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ चालू हो जाते हैं, और कुछ चालू बंद होते रहते हैं, और फिर वो पंक्ति के रूप में ऐसे चलते हुए भी दिखते हैं, वो लाइट चलते नहीं है, वो पीछे के बंद हो रहे हैं सामने के चालू हो रहे, तो ऐसा लग रहा है कि वो लाइट ऐसे चलता हुआ जा रहा है। तो यहां पर तो ऐसा होता है कि वो कमल लुप्त हो ही जाते हैं और सामने कमल आ जाते हैं। अब वो दृश्य कितना सुंदर होता होगा, नीचे जिन्होंने देखा है उनको ही पता होगा, क्योंकि भगवान का गमन तो थोड़ा ऊपर हो रहा है और बाकी जो जनता है वो नीचे धरती पर चल रही है। तो वो एक दृश्य रहता है। ये भी देवातिशय है, 14 अतिशयों में ही ये कमल रचना आती है। तदुपरांत इसके पश्चात सर्व सस्य निष्पत्ति युक्ता भूमिर्भवती। सब सस्य का अर्थ होता है धान्य, अनाज, सभी सस्यों की। आपने सस्य शब्द तो अवश्य सुना होगा, सुना है कि नहीं? पहले हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वंदे मातरम सुना है? नहीं, वहां श नहीं है, वो श उच्चारण अशुद्ध है, वास्तव में स है, साधु वाला स है। वो थोड़ी चूक है। तो ये सस्य है, तो सस्य का अर्थ होता है धान्य। निष्पत्ति युता भूमिर्भवति, उससे ये भूमि निष्पन्न हो जाती है, यानी सारी फसल तैयार मिलती है। जैसे भगवान का जहां विहार होता है वहां सारे खेत लह लहा उठते हैं। ये भी एक देवातिशय है, देवलोग ये सारे कार्य करते हैं। और शरत काल सरोवर सदृश माकाशन निर्मलम भवती, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे शरद ऋतु में वर्षा ऋतु जैसी समाप्त हुई, अनंत चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आई और वर्षा काल संपन्न हुआ, वर्षा योग संपन्न नहीं हुआ, वर्षा योग को तो संपन्न होने में कार्तिक पूर्णिमा आती है। और वैसे निष्ठापन की विधि जो होती है वो दीपावली वाली अमावस्या को होती है, उसकी चतुर्दशी को होती है। तो ऋतुओं का जो विभाग है उसको एक बार अपन सुन लेते हैं। कल्याणकारक ग्रंथ में दो प्रकार से ऋतुओं का विभाजन है, पर जो एक प्रधान धारा है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। वैसे चलन में जो है माघ शुक्ला पंचमी जो अभी आएगी, माघ शुक्ला पंचमी, इस पौष महीने के पश्चात जो माघ महीना आएगा उसके शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आएगी वहां से वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, और दो दो माह की एक ऋतु होती है। तो ये क्रम चलता है, पूरा साल भर चलता है। तो फिर एक साल के 360 दिनों में 6 ऋतु हो जाती है, और माह जो होता है 30 दिन का होता है। ये अंग्रेजी माह की बात नहीं चल रही यहां पर, क्योंकि यहां एग्जैक्ट जो माह होता है वो 31 डेज और 29 या 28 डेज वाला नहीं चलता, 30 दिन का ही एक महीना होता है। अब वो नाम से आप फरवरी को 28 की फरवरी कह देते हैं और जनवरी 31 की होती है, दिसंबर 31 का होता, जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं, लगातार दो दो महीने 31 के आ जाते हैं। फिर सी अप जू 9:30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ऐसा एक दोहा है ना। तो सी सितंबर, अप यानी अप्रैल, जू यानी जून, और नौ नवंबर, ये चार महीने जो होते हैं 30 दिनों के होते हैं, बाकी के 31, बाकी जितने महीने हैं वो सब 31 दिनों के होते हैं। और 28 की फरवरी, फरवरी जो होती है वो 28 महीने की होती है, पर चौथे सन 29, चौथे वर्ष में वह 29 दिनों की हो जाती है फरवरी। तो ये एक क्रम चलता है। लेकिन जो माह यहां पर अपन गिनते हैं, अपनी आयु अगर अपन देखें तो अगर 30-30 दिन के हिसाब से दिनों की गणना निकालें, ऐसे ऐप भी है ना, डेज काउंट करने वाले भी ऐप्स हैं, एज कैलकुलेटर एक ऐप है, इसमें एज कैलकुलेटर ऐप में आप अपनी डेट को फीड कर दीजिए, सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, इसमें अपने तारीख डाल दीजिए, तो तारीख डालोगे तो फिर वो बता देगा कि अभी तक आपके कितने दिन हुए हैं, जन्म से लेकर अभी तक आप कितने दिन के हुए हैं, और उन दिनों को आप 360 से भाजित कर दीजिए, 360 से डिवाइड कर दीजिए, तो एग्जैक्ट आपके ईयर्स आएंगे। और अगर आप वैसे गिनोगे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो निश्चित रूप से आपके वर्ष कम आएंगे, क्योंकि हर साल कम से कम पांच दिन तो ज्यादा हो गिनती में आ ही जाते हैं, और उन पांच दिनों को वो काउंट नहीं करते, वो एक ही साल में गिन लेते हैं पांच दिनों को। तो एक कालावधि व्यतीत होने पर अपनी आयु के बाद अपन जितनी आयु मान रहे हैं उससे एक साल अधिक हो ही जाते हैं। जब पांच पांच को गिनते गिनते वो 360 तक के पहुंचेंगे, जैसे हम यहां से बता रहे हैं आपको कितने वर्ष लगेंगे, सेवेंटी टू। अब उसमें चार साल में फिर एक दिन और भी बढ़ जाएगा, तो आप सोच लीजिए कि 71 वर्ष का जो मनुष्य होता है वो लगभग 72 वर्ष का होता है दिनों की गणना से। और यह कारण है कि अपन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भ्रम में जीते हैं कि हमारी आयु इतनी हो गई है, अब तो हम बूढ़े हो गए। अरे भाई, तुम एक साल पहले ही बूढ़े हो चुके थे, अभी समझ रहे हो कि इतना साल हो गया, उसमें कितना ऐड हो गया ये तो देखो। तो ऐसा हिसाब लगता है। यद्यपि ज्योतिष की दृष्टि से देखो तो अंक ज्योतिष में इंग्लिश कैलेंडर बहुत परफेक्ट है, उसमें कोई अपन वो नहीं कर रहे हैं, उसमें से ड्रॉबैक्स नहीं बता रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि उसमें पांच दिन की जो गणना होती है प्रतिवर्ष वो बढ़ जाती है। और अपन जिस दिन जन्मदिवस मनाते हैं उस दिन डेट के हिसाब से तो बिल्कुल सही मनाते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सही रहता है, लेकिन गिनती के हिसाब से देखें तो फिर आयु की वृद्धि अलग होती है। तो यहां पर बात यह है कि जो ऋतुओं की बात चल रही है उसमें कल्याणकारक ग्रंथ में उग्रादित्य आचार्य महाराज ने जो ऋतुएं दी है, ऋतु का प्रारंभ चैत्र माह से होता है। वसंत ऋतु को प्रधान मानते हुए चैत्र और वैशाख ऋतु गर्म तो होती है, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती ये जितनी जेठ और आषाढ़ में होती है। आषाढ़ में जब तक पानी नहीं गिर जाता तब तक भयंकर गर्मी पड़ती है, तो मई जून की गर्मी मार्च अप्रैल की गर्मी से अधिक होती है, और वो समय चैत्र माह का होता है। तो चैत्र और वैशाख माह ये वसंत ऋतु है। ज्येष्ठ और आषाढ़ कौन सी ऋतु होगी, अब तो आप समझ गए, ग्रीष्म ऋतु। फिर इसके बाद श्रावण और भादो, भाद्रपद जिसको कहते हैं, वे वर्षा ऋतु के माह है, क्योंकि एक ऋतु दो महीने की बताइए, एक वर्ष में छह ऋतु होती है। और यहां लिखा है, अपन देख चुके हैं कि पहले ही छहों ऋतुओं के फल फूल आदि भगवान जहां जाते हैं वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं, और कभी कभी कई रिद्धिधारी साधु जाते हैं तब भी उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ रिद्धियां ऐसी है कि जिन रिद्धियों की प्राप्ति पर साधुओं के गमन में ऐसी घटना होती है कि वो जहां जहां पहुंचते हैं वहां छहों ऋतुओं के फल फूल आ जाते हैं। तो वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद माह में है। वर्षा योग चार माह का होता है, वर्षा ऋतु दो माह की होती है। वर्षा योग को चौमासा भी बोलते हैं, और कुछ लोग अभी चातुर्मास चातुर्मास लिखते हैं। वैसे अपन देखें तो चतुर्मास शब्द होता है शास्त्र में, आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने भी चातुर्मास शब्द का प्रयोग न करके चतुर्मास शब्द का प्रयोग किया है। और चातुर्मास अगर बोलना ही हो तो स में य जोड़कर बोलना होगा, जैसे वर्णी जी बोलते थे चातुर्मास्य। तो जैसे ही भादो माह की पूर्णिमा चली गई तो उसके बाद जो माह आएगा वो आश्विन और कार्तिक माह है। आश्विन माह को आसोज कहते हैं, कुआर भी कहते हैं, और आश्विन माह के बाद कार्तिक माह आता है। अपन जानते हैं अष्टानिका में अपन ने मैना सुंदरी और श्रीपाल की भव्य कथा यहां पर सुनी थी। तो ये दो माह जो होते हैं ये शरद ऋतु के महीने होते हैं। शरद ऋतु, भाद्रपद पूर्णिमा के उपरांत शरद ऋतु प्रारंभ होती है। और शरद ऋतु की विशेषता यह है कि शरद ऋतु में जो नदी और सरोवरों का पानी वर्षा ऋतु में मटमैला होता है, शरद ऋतु में वो एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो यहां पर आचार्य ये बता रहे हैं कि शरत काल सरोवर सदृशम आकाशम निर्मलम भवति। शरद ऋतु के सरोवर के सदृश समान आकाश निर्मल हो जाता है। जहां जहां भगवान जाते हैं वहां पर आकाश में बादल नहीं होते, बिल्कुल निरभ्र आकाश होता है, बादल रहित आकाश होता है। अब शेष ऋतुओं को भी अपन सुन लेते हैं, क्योंकि अपन ने मूल विषय तो ले ही लिया कि देवों का एक ऐसा अतिशय भी होता है कि जहां जहां भगवान जाएंगे वहां से बादल छट जाएंगे, आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, आकाश में धूल धुआं वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, बादल भी नहीं रहेंगे और फिर और भी कोई ऐसी वस्तु नहीं रहेगी जिससे उसकी स्वच्छता बाधित हो, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा आकाश। फिर शरद ऋतु के उपरांत हेमंत ऋतु आती है। हेमंत ऋतु के माह कौन से हैं जो अभी चल रहे हैं? मगसिर, जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं, अथवा अगहन भी कहते हैं, अगहन, और पौष माह जो अभी प्रारंभ हुआ है। अभी जो पूर्णिमा गई ना वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी और अभी ये पौष माह है। पौष माह में कहते हैं कि धना खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, तो इस महीने पूर्णिमा तक के धना का त्याग कर सकते, धना या धनिया जिसको जो आप जिस जैसा बोलते हो, उसके जो दाने होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर ये हेमंत ऋतु होगी क्योंकि इसमें हिमपात होता है। इस ऋतु में मगसिर और पौष महीने में खूब बर्फबारी होती है और इसके उपरांत जो अंत के दो माह है वो है माघ और फाल्गुन। माघ और फाल्गुन महीने जो होते हैं उसमें शीत का प्रकोप क्रमशः घटता चला जाता है और फाल्गुन महीने तक मनुष्य रात को सोते समय अपने पैर सीधे करने लग जाता है। माघ तिला तिल बाढ़े फगना गोड़ पसारे, एक देशभाषा की कहावत है कि माघ महीने तक तो ऐसे सोते हैं लोग सिकुड़ करके, लेकिन माघ महीने में तिला तिल बाढ़े, एक एक तिल पैर फैलने लग जाता है, बढ़ते 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 फगना गोड़ पसारे, फाल्गुन महीने में पैर एकदम लंबे हो जाते हैं, यानी उतनी गर्माहट आ जाती है कि अपन सिकुड़ करके न सोए। तो ये छह ऋतुओं का वर्णन था। तो इसके बाद फिर चैत्र महीना आएगा तो वापस वसंत ऋतु शुरू हो जाएगी। वैसे तो माघ पंचमी से, माघ शुक्ला पंचमी से वसंत ऋतु को वर्तमान में चलन में माना जाता है, उसको भी आचार्यों ने स्वीकार किया। दोनों मान्यताएं आती है शास्त्रों में, मुख्य रूप से ये मान्यता शास्त्रीय मान्यताओं में, ये मान्यता मुख्य है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं दिशा सर्वा अपि, सारी की सारी दिशाएं, तिमिर काम धूम्रताम त्यजंती तमो मुंचंती। ये एक खास जानकारी की बात है कि आप, हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो कभी, एक प्रकृति का एक ऐसा एक फिनोमिना है, एक घटना है, प्रकृति में होने वाली एक प्राकृतिक एक घटना है। वो ऐसा है कि अभी जैसे यहां तो बादल छाए हुए हैं श्रवण बेलकुल में, लेकिन जब बादल नहीं होते तब आप क्षितिज को देखिए जहां आकाश और भूमि मिल रही हैं। ऐसे दृष्टिपात करने पर एक मिलती कहीं नहीं है, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि आकाश और भूमि जहां पर सीमा रेखा को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब जहां तक की भूमि आपको दिख रही है और उसके बाद फिर आपको आकाश दिखने लग जाता है। उस भाग को आप देखें तो वहां आपको आकाश का वर्ण कुछ मलिन दिखाई देता है, कुछ धुंधला, कुछ मटमैला, कभी कभी कुछ धुएं जैसा भी दिखाई देता है। तो वो दिशाएं हैं। यहां भूमि से अपन देखें तो समतल भूमि पर अगर अपन देखते हैं तो वो दिशाएं हैं। तो दिशाओं में जो ये मटमैलापन है उसके विषय में कह रहे हैं कि देवातिशय वश सर्वा दिशा धूम्रताम त्यजंती, सभी दिशाएं उस मटमैलेपन को, उस धुएं जैसे वर्ण को छोड़ देती है, स्वच्छ हो जाती है दिशाएं। देखिए ये अतिशय भी कितना अलग अतिशय है, हमें लग रहा है कि आप सुनने वालों में कई लोगों ने तो ध्यान दिया होगा कभी उस दिशा में कि ऐसा ऐसा होता है, कुछ लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। जो ज्यादा दुनियादारी में फंसे रहते हैं, प्रकृति की ओर कभी दृष्टिपात करते ही नहीं, उनको पता ही नहीं रहता कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन चलो कभी अभी मौका मिले तो देख लेना कैसी स्थिति रहती है। यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि देवों के अतिशय में एक अतिशय ये भी है कि दिशाओं में मटमैलापन नहीं रह जाता, दिशाएं स्वच्छ हो जाती है। आकाश स्वच्छ हो जाता है वो अलग बात, दिशाएं भी स्वच्छ हो जाती है। फिर क्या कह रहे हैं, शलभा अपि दिशो नाच्छादयंती धूर्लिर नोड्डीयते। और भी उसमें साथ में एक बात कह रहे हैं कि जो शलभ होते हैं, शलभ जो होते हैं, आपने मेरी भावना में एक पंक्ति पढ़ी होगी, ईति भीति व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। तो इसमें आपने ईति शब्द सुना है, वो ईति शब्द इति शब्द से अलग है। इति का अर्थ होता है इस प्रकार, या कोई विषय समाप्त करना होता है तो इत्यलम, इति, इति का अर्थ समाप्ति होता है। लेकिन ये शब्द जो है ईति है, दीर्घ ई है। अब ईति का अर्थ क्या होता है, ईति भीति व्यापे नहीं जग में, ईति का भीति, ईति की भीति अर्थात ईति का भय जगत में व्याप्त ना हो, वो ईति क्या है। तो उसके विषय में कोश के अंदर देखने पर पता चलता है कि छह प्रकार की ईतियां होती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टिर अनावृष्टिर मूषका शलभा शुका। और दूसरी पंक्ति में उसमें एक शब्द और है, प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः। इनके अर्थ हम बताते हैं आपको। छह प्रकार की ईतियां होती है जिनसे प्रजा भयभीत रहती है। पहली ईति है अतिवृष्टि, बहुत अधिक वर्षा हो जाए तो एक प्रकार से तबाही हो जाती है। दूसरी ईति है अनावृष्टि, बरसात हो ही नहीं रही है तब भी बड़ी समस्या हो जाती है, अकाल पड़ जाता है। फिर मूषका, भारी मात्रा में चूहों का उपद्रव हो जाए तो सारे अनाज और सारी गोदामें और बहुत तबाही मचा देते हैं चूहे भी। फिर चौथी ईति है शलभाह, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। यहां पर शलभ का अर्थ होता है, अंग्रेजी भाषा में उसको लोकस्ट कहते हैं। एक कीड़ा है जो इतना बड़ा होता है, उसको वो झुंड के झुंड आते हैं और फिर खेतों की बर्बादी में वो संलग्न हो जाते हैं, पूरे खेत बर्बाद कर डालते हैं। उनको टिड्डी दल भी कहते हैं, आपने सुना हो टिड्डी दल। ग्रास हॉपर जैसा ही रहता है, लोकस्ट, ग्रास हॉपर से थोड़ा बड़ा होता है और वो पूरी फसलों को नष्ट कर डालते हैं। ये भी एक प्रकार की ईति है। और एक साथ झुंड के झुंड आते हैं तो पूरे मतलब आकाश अपने को नीला नहीं दिखाई देता, आच्छादित कर देते हैं वो आकाश को। इनको अंग्रेजी भाषा में शलभ कहते हैं। और योगासन में बहुत सारे आसन प्राणियों के नाम से हैं, बकासन, कुक्कुट आसन, गरुड़ आसन, मयूर आसन, कितने पक्षियों के नाम से आसन है और जानवरों के नाम से भी कई आसन है, मार्जार आसन, ऐसे कई आसन जानवरों के नाम से भी है और कुछ कीड़ों के नाम से भी आसन है, शलभ आसन। क्योंकि ये टिड्डी दल में जो लोकस्ट होता है, ये जो प्राणी होता है, वो जब बैठता है तो उसके पीछे के पैर बड़े होते हैं तो पीछे वाला भाग ऐसे उठा रहता है। तो शलभ आसन में क्या किया जाता है, शलभ आसन में ऐसे अपन उल्टे लेट जाते हैं और लेट करके कमर के नीचे वाला भाग जो होता है उसको ऐसे ऊपर उठाते हैं, जमीन से ऐसे ऊपर कर लेते हैं, तो इसको शलभ आसन कहते हैं। शशांक आसन, खरगोश वाला आसन है, शशांक खरगोश को कहते हैं। तो आसनों में इंसान के नाम से कोई आसन नहीं मिलेगा आपको। कुछ आसन ऐसे भी हैं जो जैसे वीरासन है या ऐसे कुछ आसन मिलेंगे आपको। वीरासन में एकदम एक वीर पुरुष जैसा आसन होगा। फिर कमलों के नाम से भी आसन है, पद्मासन, वज्रासन, जो वज्रदंड होता है उसके जैसे आसन, पैरों के अंगूठे को क्रॉस रखना होता है वज्रासन में, दोनों घुटने को ऐसे सटा लेते हैं और ऊपर अपन बैठते हैं। बहुत सारे आसन है। हमने बाल्यकाल से योग का अभ्यास किया हुआ है, बिहार योग विद्यालय के हम सदस्य रह चुके हैं और जो वहां के जो प्रधान गुरु जी थे वो स्वामी सत्यानंद, परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती थे। तो हम लोगों ने योग का तो अभी तक चालू है अभ्यास हमारा। तो ये सारे आसनों की जानकारी हमारे पास इसलिए है, तो बहुत सारे आसन ऐसे। तो शलभ, शलभ उस कीड़े को कहते हैं। इसमें लिखा है कि दिशाओं में शलभों का भी वो प्रकोप नहीं होता है, हमेशा स्वच्छ रहती है दिशाएं भगवान के प्रभाव से। वहां पर देव लोग आते हैं और वो ऐसा अतिशय करते हैं कि वहां पर वो टिड्डी दल नहीं आ सकते। और कह रहे हैं धूलिर नोड्डीयते, धूल उड़ नहीं सकती। वहां दिशाओं में जो दिशा और आकाश की सीमा रेखा दिखती है ना, वहां पर भी आपको धूल नहीं मिलेगी। एक योजन तक तो धूल उड़ेगी ही नहीं, ये तो ठीक है, वो तो पूरी साफ हो जाएगी, लेकिन वहां पर भी धूल नहीं उड़ेगी। एक योजन की धूल तो वो साफ कर देंगे वायु कुमार, और वहां क्षितिज पर वो नहीं मिलेंगी आपको, धूल उड़ेगी नहीं। फिर क्या कहते हैं, ज्योतिष्कान व्यंतरान कल्पवासी देवान भवनवासिन आह्वानीय आह्वयंती महापूजार्थम त्वरितम आगच्छन्तु भवन्त इति। और ऐसा लगता है मानो सब दिशाएं ज्योतिष के देवों को, व्यंतर देवों को, कल्पवासी देवों को और भवनवासी देवों को भगवान की पूजा के लिए आमंत्रित करती हैं। ये भी एक देवातिशय है। कुर्वन्त्यन्य समन्त तो व्यावानम, चारों दिशाओं से सब देव, जो भी देव लोग जहां जिस जिन दिशाओं में हैं, उन सब का स्वागत होता है कि आओ आओ भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। सबको भगवान की पूजा के लिए आमंत्रण मिलता है। और एक बड़ा सुंदर अतिशय है, क्या लिखा है उसमें, अर सहस्रम रत्नमयम रवि तेजस तिरस्कारकम धर्म चक्रम अग्रेग्रे गंगरे निराधारं गच्छति। बहुत सुंदर बात है। जब भगवान का विहार होता है तब उनके सामने 1000 आरों वाला रत्नमयी सूर्य के तेज को तिरस्कृत करने वाला धर्म चक्र, जिस चक्रवर्ती के पास चक्रवर्ती का चक्र होता है, जिनेंद्र तीर्थंकर के पास ये धर्म चक्र होता है, वह धर्म चक्र 1000 आरों वाला होता है। आरों का अर्थ क्या होगा, जो उसके नुकीले भाग होते हैं चक्र के, वो आरे कहलाते हैं। 1000 आरे होते हैं उस चक्र के। और देखो हम आपको एक चित्र दिखाते हैं, धर्मस्थल में चंद्रप्र भगवान का जो जिनालय है, धर्मस्थल नाम सुना होगा आपने, वहां रत्नागिरी बाहुबली स्वामी है। ये देखिए, हो रहे दर्शन तो चंद्रप्र भगवान के पीछे इन्होंने जो भामंडल बनाया है, ये भामंडल आरों वाला है। देखिए आप, तो जो धर्म चक्र होता है भगवान जिनेंद्र का, उसमें ऐसे 1000 आरे होते हैं और पूरा रत्नों का बना होता है। ये संभवतः धातु का बना है, चांदी का होगा, लेकिन भगवान का जो भामंडल, भगवान का जो धर्म चक्र होता है, वह 1000 आरों वाला होता है। ये भी देवकृत अतिशय है, वो आगे आगे अपने आप चलता है भगवान के विहार में। और जब भगवान रुक जाते हैं तो समवसरण में उस धर्म चक्र को सर्वांड यक्ष और सनत कुमार यक्ष ऐसे सिर पर धारण करते हैं। समावसरण में भी ये धर्म चक्र होता है। और 14 अतिशयों में अंतिम जो अतिशय है वो है अष्ट मंगलानि भवन्ति। अष्ट मंगल होते हैं वहां पर। कौन से अष्ट मंगल? छत्रध्वज दर्पण कलश चामर भृंगार ताल सुप्रतिष्ठक इत्यष्ट मंगलानि चतुर्दशो अतिशयः। ये 14वां अतिशय है जिसमें अष्ट मंगल होते हैं भगवान के। वो अष्ट मंगल कौन से हैं? तो बोले छत्र होता है, अष्ट प्रातिहार्य वाला छत्र अलग है, अष्ट मंगल वाला छत्र अलग है। छत्र होता है, ध्वज ध्वजा होती है, फिर दर्पण होता है, तीसरा मंगल दर्पण है, चौथा कलश है, पांचवा चामर है। चामर प्रातिहार्य भिन्न है इससे। फिर छठा जो है वो भृंगार है। भृंगार का अर्थ कलश है लेकिन उसमें टोंटी है, उसको झारी कहा जाता है, भृंगार। फिर ताल है, ताल का अर्थ व्यजन, व्यजन को बुंदेलखंड में बिजना बोलते हैं, हाथ पंखा, ये भी मंगल है, मंगल द्रव्य है ताल। राजा लोग जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनके सिर पर छत्र होता है, बगल में चमर होते हैं, और फिर पंखा लेकर के भी कुछ परिचारिकाएं बड़े बड़े पंखा लेकर के ऐसे ऐसे उसको धीरे धीरे हिलाती है, तो वो हवा उनकी तरफ आती है और राजा उसका उस हवा में रहते हैं। तो ये ताल कहलाता है, बिजना कहलाता है, हाथ पंखा भी इसको कहते हैं। बहुत अच्छी डिजाइन का होता है। अभी अपन साधारण देखेंगे तो फिर वो बांस के डंडे वाला होता है और उसके अंदर एक बांस ऐसा रहता है कि जिसमें आप उसको पकड़ लो और ऐसे घुमाते रहो, वो घूमता रहता है। वो भी एक तकनीक है, उसके अंदर से वो बांस का ही डंडा जाता है और ये बड़ा बाहर वाला भी बांस का ही होता है, अंदर से खोखला होता है, तो उसके अंदर से एक डंडा जाता है, नीचे थोड़ा फैला हुआ हिस्सा रहता है बांस के डंडे में, तो वो निकल नहीं जाता उधर से, और ऊपर जो है वो पंखा वो लोग अच्छी तरह से अपनी कारीगरी से बनाते हैं और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो हाथ पंखा होता है, प्लास्टिक का भी आता है, लेकिन ये कुटीर उद्योग वाले जो होते हैं वो उससे बनाते हैं, ओरिजिनल, जो ऑर्गेनिक कह सकते हैं आप उसको, और कि वैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भोजन में ज्यादा प्रयोग में आता, तो उस टाइप का है। तो ये ताल, ये भी अष्ट मंगल में से एक है। और फिर सुप्रतिष्ठक, सुप्रतिष्ठक का अर्थ होता है आजकल उत्तरापथ में देखने को मिलता है कि सब जगह मंदिरों में अष्ट मंगल में साथिया रखा जा रहा है। वास्तव में ये समझने में थोड़ी भूल चूक हो रही है। वस्तुतः सुप्रतिष्ठक का अर्थ साथिया नहीं होता, साथिया को संस्कृत भाषा में स्वस्तिक कहते हैं। अब वो स्वस्तिक और सुप्रतिष्ठक में कैसे पता नहीं क्या कन्फ्यूजन हो गया, क्या उलझन हो गई, क्या भ्रम हो गया कि वहां जितने भी नए मंदिरों की प्रतिष्ठा हो रही है उनमें अधिकांश में आपको देखने मिलेगा कि वहां पर आपको अष्ट मंगलों में साथिया देखने मिलेगा, जबकि साथिया अष्ट मंगलों में नहीं होता। साथिया का जो वर्णन आता है शास्त्रों में, जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तब इंद्राणी रत्नों के चूर्ण से साथिया बनाती है और फिर उस दीक्षा शिला पर भगवान विराजमान होते हैं और फिर पंचमुष्टि केशलुंच करके दीक्षा लेते हैं। और वर्तमान की जो दीक्षा विधि आज जो शास्त्रों में मिलती है, जो आचार्य दीक्षा देते हैं, उसमें सौभाग्यवती नारी अक्षतों का साथिया बनाती है और उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र आच्छादित कर देती, उन उस साथी को ढक देती है एक श्वेत वस्त्र से, और उसके ऊपर दीक्षार्थी को बैठा ला जाता है और दीक्षा विधि संपन्न की जाती है। और पांच स्थानों से केशों का लुंचन गुरु महाराज करते हैं अपने हाथों से, आगे से, बीच से, पीछे से, आजू से और बाजू से, लेफ्ट राइट से, ऐसे पांच स्थानों से वो करते हैं और फिर उनको संस्कारित करते हैं। बायां हाथ उनके सिर पर रख करके कुछ विधि करते हैं, ऐसी दीक्षा विधि होती है। वो बायां हाथ जो सिर पर रखते हैं गुरु, वो जीवन में कोई भी दीक्षार्थी भूल नहीं सकता, बड़ा अद्भुत होता है वो। वो उनके हृदय के निकट वाला हाथ होता है, ऐसे रखते हैं, अपना हृदय थोड़ा बाई तरफ रहता है, एकदम बाई तरफ नहीं रहता है, थोड़ा बाई तरफ रहता है। तो ये सुप्रतिष्ठक, ये जो शब्द है ना सुप्रतिष्ठक, इसमें टक छपा हुआ है, सुवैठ मूल गाथा में सुप्रतिष्ठ होना था, है ठ है, त्रिलोक सार में ठ है, तो फिर इसमें हो सकता है छपने में ऐसा हुआ। अनुवाद में तो उन्होंने अलग अनुवाद ही दे दिया, उसका अर्थ ही बता दिया, मूल शब्द नहीं दिया। एक काम करते हैं, इसकी एक प्रति और भी हमारे पास, गाथा क्रमांक 32 थी ना, उस प्रति में देखते हैं, गाथा क्रमांक 32 में पाठ क्या दिया। उसमें ठ दिया है, ठ ही होना चाहिए, सुप्रतिष्ठक। इसका अर्थ क्या होगा और इसको मंगल द्रव्य माना गया है, अष्ट मंगलों में अंतिम यही है सुप्रतिष्ठक। त्रिलोक सार की टीका में देखते हैं अपन, ये सब हम आगम के प्रमाण इसलिए दे रहे हैं कि आप में अगर कोई श्रोता ऐसे हो जो अन्य किसी के साथ इस चर्चा को करते समय सामने अगर कोई प्रश्न आ जाए कि इसका क्या प्रमाण है, तो वो प्रमाण दिखा सके, इसलिए हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कई लोग प्रमाण मांगते हैं और वो जरूरी है, इस काल में बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि बिना प्रमाण के बहुत सारी बातें आज चल रही है और उससे जनता भ्रमित हो जाती है, तो हम आपके सामने वो रख देते हैं। जब हमारे सामने कोई अन्य साधु या विद्वान प्रमाण बताते हैं तो हम बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा करके लालायित होकर सुनते हैं उसको, बहुत आनंद आता है। प्रतीक्षा धैर्य की परीक्षा है, हम टीका वाला निकाल रहे हैं ना, हमारे पास त्रिलोकसार की कई अच्छी अच्छी प्रतियां हैं, चलो भाग्य की बात है कि वही गाथा खुली, त्रिलोकसार की गाथा क्रमांक 989, इसमें लिखा है, भिंगार कलश दप्पण वीण धय चामरादवत्त महा सुवैठ मंगलाणीय अठहिय सयाणि पत्तेयम्। भृंगार कलश दर्पण वीजन ध्वज चामर ध्वज चामरात पत्र सुप्रतिष्ठान्यष्ट मंगलानि तानि मंगलानि पुनः प्रत्येकम मष्टाधिक शत प्रमितानि भवन्ति। ये एक एक नहीं होते अष्टमंगल, प्रत्येक 108 108 होते हैं। छत्र 108 होंगे, चावर 108 होंगे, झारियां 108 होंगी, कलश 108 होंगे, दर्पण 108 होंगे, बीजन बिजना 108 होंगे, पंखा हाथ पंखा, ध्वजाएं 108 होंगी, सुप्रतिष्ठ भी 108 होंगे। ये सुप्रतिष्ठ क्या है तो इसके 200 वर्ष पुराने अनुवाद में देखते हैं। इसका वर्तमान अनुवाद भी देख लेते हैं एक बार, जिसमें पूज्य गणनी आर्य का विशुद्ध मति माता जी ने लिखा है, झारी कलश दर्पण पंखा ध्वजा चामर छत्र और ठोना, ये 8 मंगल द्रव्य हैं। ठोना शब्द लिखा है जिसको संस्कृत में सुप्रतिष्ठ कहते हैं या सुप्रतिष्ठक भी कहते हैं, क अथवा बिना क के वो शब्द होता है। तो ठोना ये अंतिम मंगल है। अब 200 वर्ष पुराना जो अनुवाद है वो और देख लेते हैं। मिल गया। देखिए ये अनुवाद जो है एक विद्वान द्वारा किया हुआ है, पंडित टोडरमल जी का नाम सुना होगा आपने। ये 200 वर्ष पुराने एक विद्वान हुए जिन्होंने गुम्मटसार जीवकांड, गुम्मटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार, इन पांचों नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य द्वारा विरचित पांचों शास्त्रों का ढूंढारी भाषा में, उस काल की एक भाषा थी ढूंढारी भाषा, उसमें अनुवाद किया है। तो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। अर्थ, झारी कलश आरसा, दर्पण को वो आरसा लिख रहे हैं, संस्कृत में आदर्श भी कहते हैं दर्पण को, बीजना ध्वजा चामर छत्र अर ठौना, ए 8 मंगल द्रव्य हैं। ते एक एक मंगल द्रव्य 108 प्रमाण तहां हो है। ढूंढारी भाषा में अर्थ एकदम सिंपल है, जारी कलश दर्पण हाथ पंखा ध्वजा चामर छत्र और ठोना, ये अष्टमल मंगल द्रव्य होते हैं और ये प्रत्येक 108 होते हैं। देवातिशय है ये। अतिशय क्यों है ये, क्योंकि आप यहां पर इस पंचम काल में ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं कि आज भी मंदिर में 108 की संख्या में इन 8 मंगल द्रव्यों को स्थापित किया जा सकता है, उसमें इसको अतिशय क्यों कहा जा रहा है। तो उसका समाधान ये है कि नंदीश्वर भक्ति में आज आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो अष्टमंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कहां स्थापित होते हैं अथवा किसके हाथ में होते हैं, उसका विवरण अपन और देख लेते हैं। नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये वर्णन किया है। इत्यष्ट मंगलं च स्वादर्श प्रभृति भक्तिराग परीतैः उपकल्प्यन्ते त्रिदशैः रेते निरुपमाति विशेषाः। इस तरह के अष्ट मंगल उपकल्प्यन्ते त्रिदशै, देवों के द्वारा रचे जाते हैं और व्यवस्थापित किए जाते हैं, संपाद्यन्ते। स्वादर्श प्रवृत्ति, दर्पण आदिक अष्ट मंगल द्रव्य, छत्र ध्वज कलश चामर सुप्रतीक। देखिए एक नाम और है इसका, सुप्रतिष्ठे एक नाम था और ये नाम सुप्रतीक भी दे रहे हैं यहां पर। सुप्रतीक का अर्थ वही है सुप्रतिष्ठ। फिर भृंगार ताल लक्षण मंगलस्य तत्तथोक्तम। देवों के द्वारा रचित होते हैं अतिशय। कैसे होते हैं वो देव? भक्ति राग परीत ही युक्त ही। भक्ति और प्रीति दोनों से संपन्न वो देव हैं और वो देव ये 14 अतिशय करते हैं। और एक खास बात और भी आई है इसमें कि जब नंदीश्वर में वो कल्याण महोत्सव करते हैं, पंच कल्याण तीर्थंकर के तो साक्षात होते ही हैं, लेकिन कुछ जो बड़े महामहोत्सव को कल्याण कहते हैं ना, कल्याण का अर्थ महामहोत्सव, तो जब वो महामहोत्सव नंदीश्वर द्वीप में करते हैं 8 दिनों का, तब वहां पर भी ये स्थिति होती है। तो वहां पर जो स्थिति होती है उसका 2 काव्यों में वर्णन है। नंदीश्वर भक्ति के अंदर आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, भेदेन वर्णना का सौधर्म स्नपन कर्तृता मापन्न परिचारक भाव मिता शेषेन्द्रा रुद्र चंद्र निर्मल यशस मंगल पात्राणि पुनस् तद्देव्यो बिभ्रत स्म शुभ्र गुणाढ्या अप्सरसो नर्तक्य शीर्ष सुरास्तत्र लोकना व्यग्रधिय। अलग अलग हम क्या वर्णन करें वहां की शोभा का, कहां की शोभा का? नंदीश्वर के अभिषेक महोत्सव की शोभा का। सौधर्म स्नपन कर्तृता मापन्न, जब सौधर्म स्नपन कर्तृता को प्राप्त होता है अर्थात जब सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है तब शेष इंद्रा बाकी सारे के सारे इंद्र यो रुद्र चंद्र निर्मल यशस उज्ज्वल चंद्रमा के समान निर्मल है यश जिनका, ऐसे शेष इंद्र सौधर्म इंद्र के अभिषेक करते समय परिचारक भाव मिता सेवक जैसे हो जाते हैं। यानी सौधर्म इंद्र अभिषेक कर रहा है तो वो सारे बाकी इंद्र जो है वो कोई चंवर लेकर ढोने लग जाता है, कोई छत्र पकड़ लेता है और कोई इस तरह से सब सेवक जैसा काम करने लग जाते हैं और इंद्र के हाथ में भी पात्र पकड़ाने लग जाते हैं, अभिषेक के पात्र जो होते हैं। तो अब इसका अलग से क्या वर्णन करें, जहां पर सौधर्म इंद्र जब अभिषेक कर रहा होता है तब बाकी इंद्र सेवकपने को प्राप्त हो जाते हैं और तद देव्य उन सब इंद्रों की इंद्राणियां शुभ्र गुणाढ्या धवल गुणों से जो संपन्न इंद्राणियां हैं वे मंगल पात्राणी बिभ्रतिस्म मंगल पात्रों को अपने हाथ में बिभ्रति अर्थात धारण करती हैं। और मंगल पात्र का अर्थ क्या लेना है यहां पर? तो यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं मंगल पात्राणी अष्टौ, आठ मंगल पात्र होते हैं। कौन से आठ? तो श्लोक, श्लोक बता रहे हैं, छत्रध्वजं छत्रंध्वजं कलश चामर सुप्रतीकं भृंगार ताल मति निर्मल दर्पणं च शंसंति मंगल मिदन निपुण स्वभावा द्रव्य स्वरूप मिह तीर्थ कृतोष्ट चैव। छत्रम ध्वजम कलश चामर सुप्रतीकम, समाहार द्वंद समास कर दिया, भृंगार ताल अति निर्मल दर्पणंच निपुण स्वभावा इदम मंगलम शंसन्ति। कुशल है स्वभाव जिनका, ऐसे ज्ञानी जन इन आठों को अष्टमंगल के रूप में प्रशंसित करते हैं, इनकी प्रशंसा अष्टमंगल के रूप में करते हैं इन आठ पदार्थों की। और यह इस जगत में इदम, ये जो अष्टमंगल है, तीर्थ कृतः चैव द्रव्य स्वरूपम्, तीर्थंकर के ही पास होते हैं और वो उनका ही द्रव्य स्वरूप है। तीर्थंकर भगवान का जो द्रव्य स्वरूप यानी जो बाह्य रूप है उसमें ये सम्मिलित है। देवकृत होने के कारण देवातिशय में सम्मिलित है और वैसे तीर्थंकर के होने के कारण वो तीर्थंकर का ही द्रव्य स्वरूप है। तो तीर्थंकर इन अष्ट मंगलों से रहित नहीं हो सकते, ये बात निश्चित हो गई। तो जहां भी जिनालय में जिनेंद्र भगवान हो वहां पर इन अष्ट मंगलों की स्थापना आवश्यक होती है। भले आप 108 ना कर सके लेकिन कम से कम प्रतीक रूप में सही इनका अस्तित्व वहां पर अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। अप्सरसो नर्तक्यस्तत्राभूवन, वहां नंदीश्वर पर्व में अप्सराएं वहां नर्तकी बन जाती है, नृत्य करती है, नृत्यांगना हो जाती है और शेष सुरास सुरास तत्र लोकनायाम दर्शने व्यग्रधिया व्याकुल बुद्धिया, बाकी सारे देव उस अभिषेक को देखने में आकुल व्याकुल रहते हैं। अरे मुझे तो देखने दो, तुम तो कितनी देर से देख रहे हो, मुझे भी देखने का मौका दो। धक्का मुक्की हड़बड़ी वो सब, वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होते लेकिन ऐसे एक आकुलता इतनी होती है कि सबको देखने की भावना होती है। इंद्र अभिषेक कर रहे हैं और बाकी सब उसको देख रहे हैं। अब इसका अर्थ ऐसा मत प्रतिफलित करना कि बाकी इंद्र अभिषेक नहीं करते, बाकी देव आदि कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ इतना ही वर्णन होता है। ये वर्णन उस काल का है, आचार्य महाराज बोल रहे कि अलग अलग हम क्या वर्णन करें। इसका अर्थ क्या हुआ कि अलग अलग कुछ है तो सही, तो यहां ये कह रहे हैं कि अलग अलग हम क्या वर्णन करें, जब सौधर्म इंद्र अभिषेक करता तब ये स्थिति बनती है। समझ में आई बात? एक आंशिक वर्णन है ये, पूरा वर्णन करेंगे अलग अलग तो बहुत लंबा वर्णन हो जाएगा, इसलिए एक ये सौधर्म इंद्र जब अभिषेक कर रहा उस समय का वर्णन है। तो इसका अर्थ ऐसा घटित करना अप्रासंगिक हो जाएगा कि बाकी लोग कभी कुछ नहीं करते, वो जैसा इस समय चल रहा वैसा ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। भेदेन शब्द, भेद पूर्वक हम क्या वर्णन करें, हम अभेद से मतलब उसमें से एक निकाल करके हम बता रहे हैं आपको। एक जो प्रधान अभिषेक करने वाले इंद्र हैं सौधर्म इंद्र, उनको ही यहां पर हम बता रहे हैं। ऐसा वर्णन है। तो इस तरह ये देवकृत 14 अतिशयों का वर्णन अपन ने पढ़ा। सुप्रतीक या सुप्रतिष्ठ ठोने का पर्यायवाची है, इसमें एक एक के अर्थ भी दिए हैं। छत्र और ध्वज तो प्रसिद्ध है, फिर सुप्रतीक प्रतिग्रह, देखो सुप्रतीक का अर्थ होता है जहां भगवान का प्रतिग्रहण होता है, जहां भगवान का अपन हिंदी में कहेंगे पड़गाहन होता है। पूजा के पहले अपन भगवान का पड़गाहन करते हैं और उसके बाद उनको उनकी वो करते हैं। गुरुओं का भी ऐसे ही होता है, पहले पड़गाहन होता है, बाद में अंदर जाकर के पूजा होती चौके में। तो प्रतिग्रहण सुप्रतीक है, और प्रतिग्रहण कहां होगा? उस ठोने पर होगा। ठोने पर अपन आह्वान करेंगे कि आइए, साक्षात भले हैं भगवान वहां पर, लेकिन फिर भी उनको अपने निकट बुलाने के लिए ठोने पर बुलाया जाता है। ऐसी एक प्रक्रिया, उसको पुरस्कार की विधि बोलते हैं। तो विधि का अपन यहां पर लोप नहीं कर सकते। अपन तर्क करते हैं, देखो चरणानुयोग में तर्क करते हैं, द्रव्यानुयोग में जहां तर्क करना आवश्यक है वहां तर्क करते हैं, और प्रथमानुयोग में तर्क कर चरणानुयोग में तर्क करते। चरणानुयोग तर्क का विषय नहीं है, चरणानुयोग आज्ञा प्रधान है और द्रव्यानुयोग परीक्षा प्रधान है। दोनों अनुयोगों में अंतर है। तो इस तरह देवकृत 14 अतिशयों का वर्णन अपन ने पढ़ा। तो नमो अरहंताणम में जो तीर्थंकर भगवान थे, उन तीर्थंकर के जन्म संबंधी 10, केवल ज्ञान के 10 और देवकृत 14 अतिशय, इनको पढ़ने पर अतिशयों की गणना कितनी हुई? 34 अतिशय। तो 34 अतिशय से संपन्न जिनेन्द्र देव को अपन नमस्तु करते हैं। अब 46 गुण कैसे करेंगे अपन? 46 गुणों के लिए अपने को कुछ और जोड़ना होगा। कितने कितना जोड़ना होगा? 34 में 12 जोड़ोगे तब 46 गुण होंगे। तो 12 जो हैं बचे हुए, उनमें 8 तो प्रातिहार्य है और 4 जो भगवान का अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 है। ऐसे 46 गुणों के धारक नमः अरहद्भ्यः, नमो अरहंताण, तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनको नमस्त। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन नाथ महं यजे। ओम राम ह्रीं रूं ह्रौं रः अस्यावसा देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्तेर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनं जयतु शासनम्।